संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे।
आज ब्रह्मचर्य की चर्चा करनी है। ब्रह्म माने होता है आत्मा, शुद्ध आत्मा, त्रिकाली ध्रुव, दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येय, उसका कारण परमात्मा, उसका नाम है ब्रह्म। और उसमें चर्य माने लीनता, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। क्योंकि उस आत्मा को जाने बिना उसमें लीन नहीं हुआ जा सकता, और उसमें यही मैं हूं ऐसी प्रतीति रूप सम्यक दर्शन के बिना अनंत काल तक लीन रहा नहीं जा सकता। क्योंकि दूसरों के घर तो हम मेहमान होते हैं, जीवन भर नहीं रह सकते हैं, जीवन भर तो अपने में ही रहा जाता है। तो किसी आत्मा को अपने में लीन होना है तो उसे दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो स्वयं को जानना, क्योंकि जाने बिना लीन कैसे होगा, और दूसरे यही मैं हूं ऐसी दृढ़ प्रतीति होना, कोई उसमें अनंत काल तक रहा जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आत्मा की लीनता वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के साथ लगा जो उत्तम शब्द है वो इस बात का द्योतक है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही ये निश्चय ब्रह्मचर्य होता है। पूजन की पंक्ति में दोनों बातों पर समान रूप से बल दिया है, कहा ना, शील बार नव राख ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाख नर भव लाहो लीजिए। कि अपने शील की रक्षा नौ बाणों को लगाकर करना चाहिए। नौ बाण का अर्थ क्या है? कि पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग करना, किसी विपरीत सेक्स वाले से ज्यादा संपर्क नहीं रखना, उससे बोलना चालना तो मर्यादा में बोलना चालना, ये सब चीजें जो है ना, ये शील की बाड़े हैं। शील तो रत्न है ना, हम घर में रत्न रखते हैं तो कहां रखते हैं? जो शहर के बीच में अपना मकान होता है उस मकान के भी बीच के कमरे में, और बीच के कमरे में एक तिजोरी होती है, उस तिजोरी के भी बीच के खन में, क्यों वहां जाके सुरक्षित रखते हैं? क्योंकि बहुत कीमती चीज है। ऐसे ही शील हमारी बहुत कीमती चीज है, उसकी हमें नौ बारे लगाकर सुरक्षा करना चाहिए, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार से, अनुमोदना से। और असली ब्रह्मचर्य क्या होगा? ब्रह्म भाव अंतर लखो, अंतर में अपने आत्मा को देखना। ब्रह्म भाव माने अपना आत्मा, और अंतर में अपने अंदर में लखो माने देखना, ये निश्चय ब्रह्मचर्य है। कर दोनों अभिलाष, यानी दोनों की अभिलाषा करना। ऐसा नहीं कि हम तो निश्चय वाले हैं, हमारे तो निश्चय चलेगा, क्यों मनोराजी, कि हम व्यवहार वाले हैं, हमारे व्यवहार से काम चलेगा। दोनों में एक की भी उपेक्षा होगी तो बात बनेगी नहीं। देखो कैसे निश्चय ब्रह्मचर्य को ही ब्रह्मचर्य माने जगदीश भाई, तो चक्रवर्ती भी अपनी आत्मा का अनुभव तो करता है सहायक संबंध की होने से, तो बोलो उसे ब्रह्मचारी कहें? क्षण में हजार शादियां करता है, दुनिया मानेगी हंसेगी नहीं? क्योंकि ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं। तो बाहर से समझे ना, विषय सेवन का त्याग भी उतना ही जरूरी हुआ ना ब्रह्मचारी के लिए। और कोई कहे कि ये बाहर के विषय सेवन के त्याग को ही हम ब्रह्मचारी मान ले, जान रहे हैं ना, तो फिर एक इंद्री जो है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनके स्पर्शन इंद्रियादि का विषय सेवन, जैसे मैथुन की क्रिया जिसे हम ब्रह्मचर्य का घात कहते हैं, वो देखने में नहीं आती है, तो उन्हें ब्रह्मचारी मान ले हम, बोलो क्यों? उन्हें भी नहीं माना, क्यों नहीं माना है? क्योंकि आत्मा की लीनता रूप ब्रह्मचर्य नहीं है। यदि आत्मा की लीनता रूप ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य ही माने तो हमारे भावलिंगी संत मुनिराज कुंद कुंद जिनने समय साल लिखा, जब वे आत्मा में लीन थे तभी ब्रह्मचारी माने जाएंगे, और जब वे समय साल लिख रहे थे तब पर ब्रह्मचारी कहे कि नहीं कहे, बोलो। जब वे उपदेश दे रहे थे तब आत्मा में लीन तो नहीं थे, तो उन्हें ब्रह्मचारी कैसे कहते हैं? तो जो बाहर में उन्होंने शील व्रत का पालन किया है उसी वजह से कहते ना कि नहीं नहीं वो अभी थोड़ी देर पहले आत्मा में लीन थे ना, इसकी वजह से अभी भी हम उन्हें ब्रह्मचारी कहेंगे। तो थोड़ी देर पहले भरत चक्रवर्ती भी आत्मा में लीन थे ना, तो उन्हें भी लड़ाई लड़ते वक्त में ब्रह्मचारी कहो, नहीं कह सकते ना? कहने का अर्थ है कि ब्रह्मचारी संज्ञा के लिए निश्चय और व्यवहार दोनों ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। एक बात आप निश्चय वालों को शायद अच्छी नहीं लगे, लेकिन ये बात सच्ची है कि निश्चय के बिना यदि किसने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया तो जगत उसे तो ब्रह्मचारी कहेगा, लेकिन यदि व्यवहार ब्रह्मचारी नहीं है, अकेले निश्चय ब्रह्मचारी माने आत्मा की लीनता अपने चौथे गुणस्थान के अनुसार है, तो ये दुनिया उसे ब्रह्मचारी कहना स्वीकार नहीं करे, और वो उचित है, कोई गलत बात नहीं है। साहब निश्चय की उपेक्षा कर दी और व्यवहार की आपने इतना महत्व दे दिया, लेकिन ये बात भी व्यवहार में करी जा रही ना, कहना तो व्यवहार है ना, तो व्यवहार में व्यवहार को महत्व नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा, बोलो। एक बाप के चार बेटे हैं, एक बहुत आईएएस ऑफिसर है और एक चपरासी है, तो घर में सदा तो आईएएस ऑफिसर को ही मुख्यता मिलती है, खाने में पीने में उठने में बातचीत पद में, उस चपरासी को तो बेचारे को दौड़ते ही रहना पड़ता है। लेकिन जिस दिन उस चपरासी की शादी हो उस दिन भी उसे मुख्यता नहीं मिले, क्यों? उस दिन तो घोड़े पर बैठने का नंबर रहा है, तो कहे साहब आईएएस ऑफिसर को बैठा दो, चलेगा नहीं चलेगा? कि भाई मेरी शादी में तो मेरी मुख्यता रहेगी ही ना, घोड़े पर मैं ही बैठूंगा ना, तिलक मेरे कोई होगा ना, मेरे ही गले में बरमाना डलेगी ना। तो निश्चय कितना ही महान हो व्यवहार में तो व्यवहार ही प्रधान रहेगा। व्यवहार में जब हम आपसे आप बातचीत करते हैं तो व्यवहार का काल है कि नहीं? निश्चय का काल तो आत्मलीनता का काल है, व्यवहार का काल क्या? देखिए ये हमारे पिताजी हैं, तो मैं इन्हें नमस्कार करूं कि नहीं करूं? ये सम्य ऋषि है कि मिथ्या ऋषि, ये देखोगे? गलत लोग सिंह जी, मेरी अम्मा सम्य ऋषि होगी तो मैं नमस्कार करूंगा, उनके पैर पड़ूंगा, और नहीं होगी सम्य ऋषि तो नहीं करूंगा। ये नहीं चलेगा, अपनी अम्मा का सम्य दर्शन और मिथ्या दर्शन नहीं देखा जाएगा। वो तो व्यवहार से की बात है, वो हमसे व्यवहार में बड़ी है तो हम उसको पूज्य मानेंगे, उससे हम सम्य ऋषि होकर के भी मिथ्या ऋषि नहीं हो जाएंगे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण शास्त्र में है कि मां बाप सम्यक दृष्टि नहीं थे और बेटे थे। देखो तेलना के पति राजा सैनिक, जब शादी हुई थी सम्यक दृष्टि थे या मिथ्या दृष्टि? अरे गीत मिथ्या दृष्टि थे, मालूम आपको? ऐसे थे कि जिनने मुनि के गले में सांप डाला था और वो सम्यक दृष्टि थी, तो राजा सैनिक तेलना के पैर पड़ते होंगे? चेलना राजा सैनिक की विनय करती होगी? बोलो, मैं आपसे पूछता हूं। जो पति पत्नी का संबंध है वो तो व्यवहार है ना, तो व्यवहार का जो स्वरूप है वो ही पालन करना पड़ता होगा कि नहीं करना पड़ता होगा, मैं आपसे पूछता हूं। इसलिए हमारे कवि ने बहुत सीमा में बात कही, क्या कहा? शील बार नव राख ब्रह्म भाव अंतर लखो, तो कर दोनों अभिलाष, दोनों की अभिलाषा करो। ये नहीं कहा कि एक को छोड़ दो एक को करो, नर भव लाहो लीजिए और अपने मनुष्य भव को सफल कर दो। तो क्या है व्यवहार ब्रह्मचरी? मुनिराज की अपेक्षा तो पूरे ब्रह्मचरी है ही, लेकिन गृहस्थ की अपेक्षा क्या है? तो उन्होंने आगे पंक्ति में कहा, उत्तम ब्रह्म चरिये मन आनो, और माता बहन सुता पहचानो, क्या मतलब है? विवेक तो करो, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है। अरे ये विवेक करना चाहिए ना। तो इस तरह पूजनकार ने निश्चय और व्यवहार दोनों ब्रह्मचर्य पर समान बल दिया है, लेकिन आज तो हम न निश्चय ब्रह्मचर्य को समझते हैं सही रूप में, न व्यवहार ब्रह्मचर्य को समझते हैं सही रूप में। चले व्यवहार ब्रह्मचर्य की बात करते हैं मदन लाल जी। कि व्यवहार ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? अगर स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग को, ऐसा तो नहीं। और उसमें भी हमने एक क्रिया विशेष के त्याग को, जिसे शास्त्रीय भाषा में मैथुन क्रिया कहते हैं, उसके त्याग को ब्रह्मचर्य मान लिया है। लेकिन न वो अकेला न निश्चय ब्रह्मचर्य है और न व्यवहार ब्रह्मचर्य है। क्यों? यदि उसे माने तो वो क्रिया, मैंने बोला ना एक इंद्रिय अधिक में नहीं पाई जाती है, तो उसे ब्रह्मचारी मानेंगे क्या? कि सब क्या दिक्कत है, मान लो। मान लो तो ब्रह्मचारी को तो मोक्ष होता है। देखा ना, ध्यान धर्म दस पैर करके सिम महल में पग धरा, क्यों? अब अगला पैर तो बोग महल में ही है, तो एक इंद्रिय को मोक्ष होगा नहीं होगा ना? जरा विचार करना कि आत्मा की लीनता में अथवा स्पर्शन इंद्रिय का विषय अकेला एक ही है। शास्त्र में तो आठ प्रकार के बताए हैं, जानते हैं? कड़ा नरम, ठंडा गरम, रूखा चिकना और हल्का भारी। सुने कभी? ये पुद्गल के हैं ना आज 20 भेद, आठ प्रकार का स्पर्श, पांच प्रकार का वर्ण, पांच प्रकार का रस और दो प्रकार की गंध, वही तो है ना डॉक्टर साहब? आपने तो सुने ही होंगे, मूल दिगंबरों ने तो सुने होंगे, आप वालों ने नहीं सुने हो तो नहीं सुने हो, क्या करें? आठ प्रकार के विषय होते हैं, तो आठों प्रकार के विषयों का त्याग स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग है। अकेली एक क्रिया विशेष नहीं। इसीलिए तो जब गुरुदेव ब्रह्मचर्य बितले बाते थे तो क्या क्या कहते थे, है कुछ पता? जिनने लिया है उनने तो सुना होगा, अरे साहब हम तो मनी मन में बोल लेते थे, हमें पता नहीं है। मैं पूछता हूं, ब्रह्मचारी बाल क्यों नहीं रख सकता? उसे बाल घुटाने की जरूरत क्या है? आया कि नहीं है? ब्रह्मचारी गृहस्थ भोजन नहीं करना चाहिए, ये आता ना शास्त्र में, क्यों नहीं करना चाहिए उसे गृहस्थ भोजन? वो तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं है। ब्रह्मचारी को नरम नरम गद्दों पर नहीं सोना चाहिए, आता कि नहीं आता? अब नरम नरम डल्लप के गद्दों पर लेटे लेटे एयर कंडीशन में, और अपने को ब्रह्मचारी मानने वाले के अभी कम है अपने मुखियों में। मैं पूछता हूं कि ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय है कि नहीं है? बोलो पसंद भाई, कहूंगे इतना ठंडा पसंद है, इतना गर्म, तो स्पर्श हमें ठंडा और गर्म, कड़ा और नरम, ये कड़ा हमें नहीं है, हमको नरम नरम चाहिए, हमें कड़ा चाहिए नरम नहीं चाहिए। तो चटाई पे क्यों सोते हैं ब्रह्मचारी अपने? है ना दिगंबर समाज में जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं ना, उनको शुद्ध शांत खान पान, शुद्ध पहनना ओढ़ना, श्रृंगार नहीं, ये सब चीजें होती कि नहीं? गृहस्थादि भोजन नहीं होना जो कामोत्तेजक हो, ये सब मर्यादाएं गुरुदेव भी बताते थे, अपने ब्रह्मचारी बहनों से पलवाते भी थे, आपको सबको ख्याल में होगा कि नहीं? और दिगंबर समाज में तो बहुत कड़ाई से पाला जाता है। यदि ब्रह्मचर्य एक मैथुन क्रिया के त्याग का नाम ही होता तो अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्रह्मचारी है ना, तो पांचवा गुण स्थान होगा कि छठवा उनका? अगर शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य है, लेकिन हमने ऐसा ही नहीं मानते हैं क्या? वो ब्रह्मचर्य तो आजकल एक डिग्री जैसा उपयोग में आने लग गया है। मैंने बोला था, एक सही घटना सुनाता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष की बात है, सोनगढ़ में पंच कल्याणक होने वाला था, 25,000 लोग सारे बाहर देश से वहां आए हुए थे। एक भाई मेरे पास आए कि पंडित जी आपसे एक निवेदन है। कि क्या है? कि गुरुदेव की कृपा आप पर बहुत है, तो मेरी एक सिफारिश कर दो। मैंने कहा यहां भी सिफारिश चलने लग गई क्या? नहीं, मैं कोई ऐसी बात आपसे कहने वाला नहीं हूं, बस बहुत ऐसी बात है कि आप गुरुदेव श्री से कहकर मुझे इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा के अवसर पर ब्रह्मचर्य व्रत दिला दो। इसमें मेरा क्या काम है? तू लेने वाला, गुरुदेव श्री देने वाले, इसमें बीज के सिफारिश की क्या जरूरत है? क्यों तुम रुपये पैसे थोड़ी मांग रहे हो? तुम नौकरी थोड़ी मांग रहे हो? जाओ तुम। कैसा, मैं तो गया था लेकिन उनने क्या हुआ? क्यों नहीं, अगली साल देखेंगे। तो मैंने कहा उनने कोई सोच समझ करके कुछ कहा होगा, तो आप अगली साल ले लेंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है? कि नहीं साहब। मैंने कहा गुरुदेव आपको भले ही अभी ब्रह्मचर्य नहीं दे, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य से रहने से रोक तो नहीं सकते हैं। है उन्हें ताकत? क्या मैं तो अगली साल ब्रह्मचर्य दूंगा, तो तब तक तुम ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते हो। रोक सकते हैं तो लोग जी, तो फिर क्या डर है? तुम रहो ना ब्रह्मचर्य से, अगली साल ले लेना। क्या नहीं साहब? मैंने कहा देखो, उनने अभी मना तत्काल मना कर दिया है, तो तत्काल सिफारिश करने से कोई फायदा नहीं है। मैं 15 दिन बाद उनसे सिफारिश करूंगा। तत्काल की बात ताजी चोट अच्छी नहीं होती है, ख्याल में आया? तो फिर क्या आएगा, मौका निकल जाएगा। कौन सा मौका? आपको 1 वर्ष की बजाय 15 दिन में दिला दूंगा। कि फिर ऐसा अवसर कब आएगा? कैसा अवसर? के 25,000 लोगों की उपस्थिति, क्या भगवान का दीक्षा कल्याण, हजारों लोग जब इकट्ठे होंगे। तो मैंने कहा तेरे को ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए, 25,000 लोगों में ब्रह्मचर्य की डिग्री चाहिए, कि जिससे तू सारे देश में जाकर उसे भुना सके। अकेले में 15 दिन बाद दे दिया और तूने ले लिया, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा? क्यों? और उसको भुनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितने एजेंट लगाना पड़ेंगे गांव गांव में बताने के लिए? क्यों? क्या मेरे ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। गजब हो गया है कि इसको स्त्री का ग्रहण करना हो तो भी बैंड बाजे चाहिए, जुलूस चाहिए, भीड़ चाहिए। क्यों? और त्याग करना हो तो भी बैंड बाजे चाहिए, जुलूस चाहिए, भीड़ चाहिए। शादी करने में 100-200 आदमी की भीड़ कहां से काम चल जाता है, लेकिन ब्रह्मचर्य लेना हो तो 25,000 की भीड़ चाहिए। शादी के लिए श्रृंगार चाहिए, तो अब ब्रह्मचर्य में देते हैं ना, हमारे दिगंबर समाज में दीक्षा देते हैं, तो उसके पहले लड़की को ऐसा श्रृंगारते हैं जैसे दुल्हन बनाया हो, और जुलूस बना के निकालते हैं। यहां भी करते होंगे बंबई में, क्यों? दीक्षा लेने जा रही है और उसके पहले श्रृंगार, गजब हो गया। ये तो श्रृंगार के त्याग तक बिना के नहीं है। और हाथी पे बैठाना, रथ में बैठाना, ये करना। ग्रहण में भी वही आडंबर और त्याग में भी वही आडंबर। मेरी समझ में नहीं आता कि ग्रहण से त्याग तो उल्टी क्रिया है ना, तो उसका फंक्शन भी उल्टा होना चाहिए ना। उसमें तो कुछ सादगी होना चाहिए, कुछ आडंबर होना चाहिए। बोलो, ये तो बिल्कुल बहुत गुप्त चीज है ना। तुम ले रहे के नहीं साहब, शास्त्रों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी आया है कि खूब भीड़ भाड़ में दीक्षाएं ली जाती थी और दी जाती थी। आया है उसका कारण है। उसका कारण यह है कि एक 25 वर्ष का नवयुवक है, उसे ब्रह्मचर्य लेना है, वो तो उसका तो ब्रह्मचर्य से रहने का विचार है, लेकिन सारे मोहल्ले और गांव को थोड़ी पता है। इसे लड़की वाले कितने चक्कर काटते हैं, बेचारे मां बाप को परेशान करते हैं, उसको परेशान करते हैं, हमारी लड़की देख लो। क्यों? एक दम सबके सामने घोषणा हो जाए, सारी झंझट खत्म। कि फिर कोई ऐसा ऑफर लेके नहीं आए। अब तू तो 80 वर्ष का बुढ़ा हुआ है, अब तेरा कौन तेरे को चक्कर है? कैसे तेरे को इतनी भीड़ में ब्रह्मचारी चाहिए? मालूम क्या हुआ वही सोनगढ़ में? उसी में आपने देखा होगा कि एक 80 वर्ष का बहुत बड़ा आदमी खड़ा हुआ गुरुदेव के सामने। गुरुदेव ने पहले मना किया कि क्या कैसी किसी किसी तमें बैठो। लेकिन खड़ा हो ही गया तो क्या ठीक है, कोई बात नहीं है। बाई ने खड़ा, बहन ने खड़ा करो, बहन ने गुजराती की बहन समझे ना, हिंदुस्तानी हिंदी वाली बहन नहीं, मैंने पत्नी। तो पत्नी तो पिछले साल स्वर्गवास हो गया, तो गुरुदेव का चेहरा देखने लायक था कि अब अस्सी वर्ष का बच्चा काय को खड़ा हुआ है। अरे एक खड़े होकर घोषणा का अर्थ तो ये है कि मैं आज तक ब्रह्मचारी नहीं हूं। लोग तो ये समझ रहे हैं कि तू वर्षों से होगा। क्या विपिन भाई समझ रहे हैं? आज मैं ले रहा हूं इसका क्या मतलब है? इसलिए कल तक मैं नहीं था। और तो और ब्रह्मचारी व्रत ले लेते हैं और फिर उन्हें भगवान का मां बाप बनना है। कैसा मेरे पास पूछना था, शायद मुकुल भाई ने पूछा था, किसने पूछा था कि साहब वो फला आदमी ब्रह्मचारी भगवान के मां बाप बन सकते हैं? मैंने कहा एक दफे बन चुके हैं ना, जब दूसरे बन जाएंगे। गजब हो गया, भगवान के माता पिता बनते हैं तो ब्रह्मचारी ले लेते हैं, ले लिया था। तो ब्रह्मचारी मां बाप द्वारा कैसे बनेंगे? उन्हें मां बाप बनने की इच्छा है क्या? कैसे ब्रह्मचारी है? समझ में आ गई है? जिन्हें मां बाप बनने की इच्छा है अभी इसी भव में, भगवान के ही सही, ब्रह्मचारी मां बाप नहीं बन सकते हैं। ब्रह्मचारी नहीं लिया हो तो बन सकते हैं, और फिर उस वक्त लेना पड़ेगा। वो दीक्षा कल्याणक के दिन के पहले तक ब्रह्मचारी नहीं ले सकते हैं, ब्रह्मचारी नहीं ले सकते हैं। बोलो, दीक्षा कल्याणक के दिन ब्रह्मचारी ले सकते हैं, जन्म कल्याणक के पहले ब्रह्मचारी नहीं ले सकते हैं। ब्रह्म भाई नियम शास्त्र की बात है, मैं क्या करूंगा? क्यों नानी भाई समझे? तो ये ब्रह्मचर्य ये भी डिग्री है, ये भी कोई मान सम्मान की चीज है, ये तो प्योर आत्मा के कल्याण की चीज है। और उन्होंने तो ये कहा कि निश्चय ब्रह्मचर्य के साथ ही व्यवहार ब्रह्मचर्य हो तो उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो निश्चय ब्रह्मचर्य तो सम्मोधन के बिना होता ही नहीं है, कि तुम्हें सम्मत ऐसे सम्मोधन तो नहीं है, ब्रह्मचर्य दे दो। किसान निर्वृत्ति से रहेंगे तो हम स्वाध्याय करेंगे तो हमें से प्राप्ति होने के चांस है। तो निर्वृत्ति से रहने का निषेध नहीं है, और उसके लिए आप शादी नहीं करो तो बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया बात इस अर्थ में है कि आपको कमाना कम पड़ेगा, बाल बच्चों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्यों बेरूम और चाहिए ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इतना ही लाभ है, इससे ज्यादा तुम कुछ समझ रहे हो तो बहुत धोखे में हो, कि मैं बहुत बड़ा तीर मार रहा हूं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, शास्त्र पढ़े हैं आपने? 11 प्रतिमाओं के नाम जानते हैं पंडित जी? ब्रह्मचर्य प्रतिमा कौन सी है? दासनी है, आप जानते हैं? पहले सम्मा दर्शन हो चौथे गुणस्थान में, फिर पांचवा गुणस्थान हो, तो अभी 6 प्रतिमा तक ब्रह्मचर्य नहीं है। 6वीं प्रतिमा धारण करे और घोड़े पर बैठ के शादी करने जाए और बच्चे पैदा हो तब चलेगा। शास्त्र की आज्ञा है, मैं नहीं कह रहा हूं। संतम स्थान वाला तो 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य है। अब तेरे सम्मा दर्शन नहीं है, पहली प्रतिमा नहीं है, दूसरी प्रतिमा नहीं है, तीसरी नहीं है, चौथी नहीं है, पांचवीं नहीं है, 6वीं नहीं है, तो 7वीं आगम कहता है 7वीं प्रतिमा के पहले निश्चय और व्यवहार दोनों में से कोई ब्रह्मचर्य होता ही नहीं। निश्चय ब्रह्मचर्य तो मतलब वो असमर्षण हो गया उसे माने, तो वही संज्ञा है, ख्याल में है ना? वो तो इधर चौथे गुणस्थान में हो जाए मान लो निश्चय, लेकिन व्यवहार ब्रह्मचर्य तो 7वीं प्रतिमा में होती है। यानी 6 प्रतिमाओं के जो नियम है वो भी तेरे को सब पालना पड़ेंगे, तब ब्रह्मचर्य प्रतिमा होगी, ब्रह्मचर्य व्रत होगा। उसके पहले दूसरी प्रतिमा में तो ब्रह्मचर्याणुव्रत होता है। उसका अर्थ समझते हैं आप? परस्त्री का त्याग जो है असली, वो दूसरी प्रतिमा में होता है। समझ सीखे? समझ सी परस्त्री सेवन करता होगा कि नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मन से वचन से काया से कृतकार अनुमोदन आप समझ गए ना? वो जैसा होना चाहिए पंडित जी वो वैसा दूसरी प्रतिमा में होता है, चौथे गुणस्थान में नहीं होता। अनुमित तो 5वें गुणस्थान है ना, तो ब्रह्मचर्य अनुभूति पांचवें गुण स्थान में ना, चौथे में नहीं है ना, तो चौथे और पांचवें में कुछ फर्क तो होगा कि नहीं होगा। तो परस्त्री सेवन व्यसन का त्याग है, इसलिए परस्त्री सेवन तो नहीं है, वो सात व्यसन का त्यागी तो है ना, इसलिए परस्त्री सेवन का तो त्याग हो गया और ब्रह्मचर्य अनुवृत्त नहीं है, तो उसके बीच की कोई दशा होगी कि नहीं होगी। बंदनलाल जी आपके, मैं जो कहना चाहता हूं वो ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बीच में कोई होगी ना पोजीशन कि दूसरी प्रतिमा के लायक ब्रह्मचर्य अनुवृत्त नहीं है और परस्त्री सेवन व्यसन का त्याग है, इसलिए परस्त्री का सेवन नहीं है, काया से नहीं है, मन में चला जाता है तदाचित उसे लौटा लेता है, ख्याल में आया कि नहीं आया, लेकिन दूसरी प्रतिमा में वैसा भी हो तो वो तो दूसरी प्रतिमा में नहीं है, फिर दूसरी प्रतिमा नहीं है, फिर समय दर्शन नहीं है, अभी बादशाही गुण स्थान में है, सात व्यसन के त्याग का ठिकाना नहीं है। जो जैनी के लिए आवश्यक मूल गुण है शास्त्रों में पढ़े ना, रात्रि भोजन त्याग, अंधना जल का त्याग, ये सब है। सामान्य जैनी के जो नियम है वो नहीं है, अब ब्रह्मचारी हो गया, बैठ के गद्दी पर एयर कंडीशन में आराम से गुलगुले खा रहा है रात के 8 बजे, अपने को ब्रह्मचारी घोषित करता है, पागल हो गया। अभी पाक्षिक जैनी के लक्षण नहीं है, ख्याल में ना, तीन तरह के जैनी होते हैं, पाक्षिक, नैष्टिक, पास्तिक, साधक और नैष्टिक। तो पाक्षिक जैन धर्म का पक्ष है, तो अष्टमूल गुण का धारण हो, सात दशन का त्याग हो, कम से कम इतना नियम तो साधारण जैनी के, तो क्या है ब्रह्मचर्य, उसका हमें स्वरूप समझना पड़ेगा। तो अभी अपनी बात चल रही थी, अकेली मैथुन क्रिया के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, क्या काय का नाम है, स्पर्शन इंद्री के विषय के त्याग का नाम है, और स्पर्शन इंद्री का विषय 8 प्रकार का होता है, उसका जीवन बहुत शुद्ध सात्विक सरल सहज, सर्दी गर्मी का ज्यादा ख्याल नहीं, ठंडे गर्म का ज्यादा ख्याल नहीं, नरम कड़े कड़क का ज्यादा ख्याल नहीं, जैसी अनुकूलता मिल जाए तदनुसार शुद्ध सात्विक जीवन, शुद्ध सात्विक खान पान, तो वो व्यवहार से ब्रह्मचर्य है। 8 अकेले स्पर्श इंद्रिय के त्याग का नाम भी ब्रह्मचर्य नहीं है, हम तो वो भी नहीं समझते पूरा, क्योंकि आत्मा में लीनता में अकेले स्पर्श इंद्रिय का विषय बाधक नहीं है, 5 इंद्रियों के विषय बाधक है। मैं पूछता हूं कि इस विषय सेवन करते हुए तो आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता है, लेकिन लड्डू खाते खाते तो किया जा सकता है ना, शुद्ध सात्विक शुद्ध घी के बेसन के बढ़िया अटपहरे घी के, क्यों लड्डू खाते खाते तो आत्मा का अनुभव हो सकता है ना, रसना इंद्री का विषय सेवन करते हुए आत्मा का अनुभव हो सकता है, इत्र फुलेल सूंघते सूंघते तो आत्मा का अनुभव हो सकता है, क्यों मैना सुंदरी नाटक देखते देखते तो आत्मा का अनुभव हो सकता है, अरे भगवान के पंच कल्याणक देखते देखते तो आत्मा का अनुभव हो सकता है, क्यों और आध्यात्म भजन सुनते सुनते तो आत्मा का अनुभव हो सकता है, इन 5 इंद्रियों से अपने मन को हटाकर और उपयोग को आत्मा पर ले जाएंगे तब आत्मा का अनुभव रूप ब्रह्मचर्य होगा ना, आत्मलीनता कब होगी। तो ब्रह्मचर्य में अकेली स्पर्शन इंद्रिय का विषय बाधक नहीं है, बल्कि 5 इंद्रियों के विषय बाधक है। कि हम क्या करें, शास्त्र में तो नहीं लिखा है, तुम कह रहे हो अपनी तरफ से, हम कह रहे हैं कौन सा शास्त्र पढ़ा है तुमने, कहा हमने समय सार पढ़ा है, जैसे नेताजी की टीका में लिखा है, काम भोग बंद कहा, काम और भोग के त्याग की बात करी है, लेकिन मालूम क्या लिखा, जैसे नेताजी ने पढ़ा नहीं थे टीका में, बोलो बिपिन भाई, काम माने क्या और भोग माने क्या, काम माने स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय के विषय का त्याग, त्याग का विषय, और भोग माने नहीं बनते, लेकिन वहां देखना वसंत भाई अलग अलग अर्थ किया है, काम माने स्पर्शन और रसना इंद्री, इन दो को एक साथ लिया और भोग में 3 इंद्रियां डाली, तो काम और भोग दोनों को त्यागना पड़ेगा ना, तो पांच इंद्रियों के विषयों का त्याग हुआ कि नहीं हुआ बोलो। पांच इंद्रियों के विषयों का त्याग होना चाहिए कि नहीं? अब पांच इंद्रियों के विषयों के त्याग में भी अपन जरा विचार करें गंभीरता से कि पांचों इंद्रियों के विषय के त्याग की बात है तो शास्त्र में स्पर्श इंद्रिय के विषय के त्याग को ब्रह्मचर्य क्यों लिखा है? हम धोखे में आए थे, हम मां के पेट से थोड़ी सीख के आए थे, शास्त्र में पढ़ा और तुम जैसे पंडितों ने बताया है, तो उसका भी कारण है। यदि कर्ण इंद्रिय के विषय के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते तो क्या दिक्कत थी? शैलेश भाई बोलो। तो चार इंद्रिय जीवों को ब्रह्मचारी मानना पड़ता क्योंकि उनके कर्ण इंद्रिय ही नहीं है, तो उसका विषय सेवन कैसे होगा बोलो? ठीक है ना मुकेंद्र भाई? यदि नेत्र इंद्रिय के विषय के सेवन को ब्रह्मचर्य का घातक कहते तो तीन इंद्रिय जीवों को चिंटी चिंटों को ब्रह्मचारी मानना पड़ता क्योंकि उनके आंखें ही नहीं है, तो उसका विषय सेवन कैसे होगा? यदि घ्राण इंद्रिय के सेवन को विषय सेवन के त्याग को ब्रह्मचारी कहते तो दो इंद्रिय जीवों को ब्रह्मचारी मानना पड़ता, और रसना इंद्रिय के विषय सेवन के त्याग को ब्रह्मचारी कहते तो एक इंद्रिय जीवों को ब्रह्मचारी मानना पड़ता, जबकि शास्त्र में इन्हें ब्रह्मचारी नहीं माना। अब इसी क्रम में आप ये कहें कि स्पर्श इंद्रिय के विषय के त्याग को यदि ब्रह्मचारी कहा तो जिनके स्पर्श इंद्रिय नहीं है उन्हें ब्रह्मचारी मानना होगा, क्यों? हमें क्या दिक्कत है? कौन है पंडित जी ऐसे जिनके स्पर्श इंद्रिय नहीं है? अकेले सिद्ध भगवान है और कोई नहीं है, क्योंकि ये स्पर्श इंद्रिय तो इस जीव को अनादि से लेकर आज तक संसार अवस्था में जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक रहने वाली ही है, इसलिए कहा। और एक बात यह है कि स्पर्श इंद्रिय है अखंड और बाकी चार इंद्रियां हैं खंड खंड। देखो आंख कहां है? ये है। कान कहां है? ये है। नाक कहां है? ये है। और स्पर्शन जहां जहां आत्मा के प्रदेश तहां तहां स्पर्शन इंद्री, तो आत्मा पर कब्जा किसने कहा किया है? स्पर्शन इंद्री ने एक एक प्रदेश पर कब्जा किया है। आंख ने पूरे आत्मा पर कब्जा नहीं किया, कान ने पूरे आत्मा पर कब्जा नहीं किया पंडित जी, तो क्षेत्र की अपेक्षा भी अखंड है और काल की अपेक्षा भी अखंड है क्योंकि अनादि काल से है। रसना तो कभी थी और कभी नहीं थी, कान तो कभी थे और कभी नहीं थे, नाक भी कभी थी और कभी नहीं थी, ये तो आनी जानी है, ये तो मेहमान है जैसे है। लेकिन स्पर्श इंद्रिय तो अनादि से आज तक एक समय को आत्मा से अलग नहीं हुई, तो वो काल से भी अखंड है और क्षेत्र से भी अखंड है, और एक अखंडता और है उसमें। क्यों जी? कान से तो आप कभी सुनते हैं और कभी नहीं सुनते हैं, सो जाते हैं तो नहीं सुनते हैं ना। कर्ण इंद्रिय का विषय सेवन तो कभी कभी होता है, सदा नहीं होता। आंख से भी आप कभी कभी देखते हैं और कभी नहीं देखते हैं, सोते वक्त नहीं देखते ना। नाक से भी गंध आप हमेशा थोड़ी सूंघते हैं, और रसना इंद्रिय का विषय भी कभी कभी सेवन करते हैं ना, दो दोनों तो हमेशा तो नहीं करते हैं। लेकिन स्पर्श इंद्रिय का विषय 24 घंटा चालू है, ये ठंडी हवा लग रही, गर्म हवा लग रही, कड़ा नरम ठंडा गरम 24। इसलिए स्पर्श इंद्रिय का विषय सेवन काल से ऐसे भी अखंड है, एक सेकंड को इसने आत्मा का कब्जा नहीं छोड़ा। कब छूटे? कि जब आत्मा आत्मा का अनुभव करे तब छूटे। उतने काल स्पर्श इंद्रिय का विषय सेवन नहीं है और बाकी काल सदा ही है, अभी भी है। मेरा क्यों एक पंखा इधर लग रहा, एक इधर लग रहा, ये क्यों होता सब? ये विषय सेवन चालू है। इसलिए अखंड आत्मा की प्राप्ति करना है तो अखंड इंद्रिय को जीतना पड़ेगा, खंड खंड को जीतने से काम थोड़ी चलेगा। क्यों? राजस्थान केसरी का दंगल हो रहा है और उसमें कोई पहलवान जीत गया तो भारत केसरी बनेगा?
राजस्थान केसरी बनेगा। यदि उसे भारत केसरी बनना है तो पूरे भारत के लेवल पर जो दंगल हो उसमें जीतना पड़ेगा। क्यों? यदि प्रधानमंत्री बनना है तो म्यूनिसपैलिटी का चुनाव लड़ने से काम चलेगा नानजी भाई? म्यूनिसपैलिटी का प्रेसिडेंट बनना हो तो म्यूनिसपैलिटी के चुनाव से काम चलेगा? भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो म्यूनिसपैलिटी के चुनाव से काम, लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा और लोकसभा में जो चुन के आए हैं उनमें फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब प्रधानमंत्री बन पाओगे। फिर राजस्थान में तो नहीं लड़ना पड़ेगा, फिर महाराष्ट्र में नहीं लड़ना पड़ेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम भारत के प्रधानमंत्री बन जाओगे, लेकिन मैं तो महाराष्ट्र से जीत के आया हूं, मैं राजस्थान से लड़ाई नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत को जीता तो राजस्थान जीता गया, राजस्थान को जीता तो भारत नहीं जीता गया। ऐसे ही स्पर्शन इंद्री को जीता तो पांचों इंद्री जीत ली गई, और बाकी इंद्रियों को जीता तो स्पर्शन नहीं जीती गई। अखंड में हाथी के पैर में सब समाते हैं, स्पर्शन इंद्रिय हाथी का पैर है, अखंड है, इसलिए उसमें सारी चीजें समाहित तो हो जाती हैं। आंख कान नाक तो यहां है, वो शरीर सारा शरीर है, वो सारा शरीर स्पर्शन इंद्रिय है, उसमें नाक आती है कि नहीं? मैं पूछता हूं, देखो एक क्या है, क्या है बोलो ना? नाक है, स्पर्शन तो नहीं है ना? कैसे है ये तो नाक है, स्पर्शन कैसे है? छुआ ना तो हाथ गर्म लगा, इसने भी गर्म और ठंडे का ज्ञान किया ना, वो तो स्पर्शन इंद्रिय का काम है, ग्रहण इंद्रिय का काम नहीं है। तो यदि यहां स्पर्शन इंद्रिय नहीं होती तो ठंडे गर्म का ज्ञान नहीं होने चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये नाक भी है, ग्रहण भी है और स्पर्शन भी है। ये क्या है भाई साहब? कान है और स्पर्शन नहीं है, इनसे ज्यादा बढ़िया इनका कैसेट सुनता है। स्पर्शन भी है क्योंकि ये छूने से ठंडे गर्म का ज्ञान होता है, होता है नरम का कठोर का ज्ञान होता है, हल्के भारी का ज्ञान होता है, तो इससे ये स्पर्शन भी है। तो जहां नाक कान है वहां स्पर्शन तो है ही, लेकिन जहां स्पर्शन है वहां नाक कान नहीं है। स्पर्शन है लेकिन नाक भी नहीं है, कान भी नहीं है, आंख भी नहीं है, है ना? क्यों आ गया ना ख्याल? तो इस तरह से भी ये अखंड है। तो अखंड आत्मा की प्राप्ति करना है तो अखंड इंद्री को जीतना पड़ेगा, इसलिए शास्त्रों में स्पर्शन इंद्री के जीतने को ब्रह्मचर्य कहा है। लेकिन उसमें पांचों इंद्रियां समाहित तो हो गई है, उसका अर्थ ही ये है कि पांचों इंद्रियों के विषय के त्याग का नाम सच्चा ब्रह्मचर्य। समझ लो कि हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो फिर इत्र फुलेल नहीं चलेगा। फिर उन्हें यह समझाने की जरूरत नहीं है कि इस श्रृंगार नहीं चलेगा। श्रृंगार किसके लिए, काय के लिए बोलो? श्रृंगार तो दूसरों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, पत्नी पति को आकर्षित करने के लिए करती है, पति पत्नी को आकर्षित करने के लिए करता है, तो इसे किसको आकर्षित करना है? इन्हें जरा थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन किसको अच्छा लगना है तेरे को? ये अच्छा लगने में दूसरों को अच्छा लगूं, इसका नाम ही ब्रह्मचर्य का घात है, विभार। न हम निश्चय ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप समझते हैं, न व्यवहार ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप समझते हैं, और पांच इंद्रियों और विषयों के जीतने का नाम ब्रह्मचर्य हुआ। यहां तक आ गया ना अपन? पहले का लोग मानते थे अकेले मैथुन की आगे त्याग का नाम ब्रह्मचर्य, वो गलत है। अकेली स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य, वो गलत है। फिर पांचों इंद्रियों के विषय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य, यहां तक आ गए ना? अब कहते पांचों इंद्रियों के विषय का त्याग कर दे और आत्मा में उपयोग नहीं जाए तो ब्रह्मचर्य है? कि ये तो नेगेटिव ब्रह्मचर्य था, ये तो नहीं किया वाला ब्रह्मचर्य था। वो किया वाला ब्रह्मचर्य भी चाहिए ना, पॉजिटिव अस्थि रूप। ये तो नास्ति रूप ब्रह्मचर्य था, कहां कहां उपयोग को नहीं ले जाने वाली बात थी, लेकिन कहां ले जाने वाली बात भी तो है ना? इन सब पदार्थों से उपयोग को हटाकर आत्मा में ले जाना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। अब देखो ये पांच इंद्रियां हैं, तो इन अपना जो उपयोग है, जो आत्मा में लगना है, ये पांच इंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ लगता है। इन इंद्रियों की प्रवृत्ति बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी जानते हैं? देखो ये आंख से, पादनी जी आप दिख रहे हैं, आपका चेहरा मुझे दिख रहा है, मेरा नहीं दिख रहा। दूसरों को देखने की आदत है, इनकी खुद को देखने की आदत नहीं है। बहिर्मुखी वृत्ति का मतलब समझ गए ना, आंख आंख को नहीं देखती। क्यों? मेरे मन में जो बात है वो कान सुनते हैं, तुम्हारी बात सुनते हैं, आप मेरी बात सुन रहे हो, अपने मन की बात नहीं सुनते हो। कान सुनते हैं अपने मन की बात, ये दूसरों की बात सुनते हैं, ये भी बहिर्मुखी है। ये नाक है ना, तो बाहर से कोई गंदी हवा आए तो उसको ज्ञान होता है, पेट में कम गंदी हवा भरी है सबके पेट में, काय का स्टॉक है, जो हवा है वो कैसी है, अपन को गंद आ रही है नहीं आ रही ना, तो वो किसी दरवाजे से बाहर निकलकर और नाक में जाए तो भरी, यानी बाहर की बहिर्मुखी है। ज्ञान इंद्री भी बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं, ख्याल में आया ना। ये रसना है, पेट में माल भरा उसे चखती है, बाहर से जो आए उसे चखती है, और स्पर्शन इंद्री भी अपनी इंद्री सर्दी गर्म को नहीं जानती है। अरे ये तो बहुत ठंडा है, कि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो आपको मेरा हाथ गर्म है मालूम पड़ता है, मुझे मालूम पड़ता है आपका ठंडा है, लेकिन आपको अपना ठंडा मालूम नहीं पड़ता, मेरा मेरे को गर्म मालूम, ये क्या दिक्कत है। यानी ये भी स्पर्शन इंद्री भी बहिर्मुखी है, और जिस आत्मा को जानना है वो अंदर में बैठा है। तो बहिर्मुखी वृत्ति वाली इंद्रियां आत्मा के जानने के काम की नहीं है, क्योंकि आत्मा अंदर बैठा और ये बाहर को देखती है। तो खिड़कियां हैं ना घर के, बैठे अंदर बैठे हो और कोई आदमी हमसे मिलने आए और बहुत गुप्त बात करनी हो, कोई देखे नहीं और जाने नहीं, तो घर की खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं कि खोलनी पड़ती हैं? अमिल मिलाप के लिए तो खिड़कियां बंद करनी पड़ती है ना, तो अंदर तेरा आत्मा बैठा है और तेरा ज्ञान जानने वाली पर्याय भी अंदर ही बैठी है, तो उसे जानने के लिए खिड़कियां खोलता क्यों है? ये तो बंद करने की जरूरत है ना, ये खोलने की जरूरत है। बोल, लोग कहते हैं झूठा है संसार, आंख खोल के देखो, पर मैं कहना चाहता हूं कि सच्चा है तेरा आत्मा, आंख बंद करके देखो। ये आत्मा आंख बंद करके देखने की चीज है, आंख खोल के देखने की चीज नहीं है, क्योंकि जिसे देखना है वो अंदर बैठा है, जो देखने वाला है वो भी अंदर ही है, बाहर कोई है ही नहीं, तो बाहर का झांकने की जरूरत क्या है। तो पांच इंद्रियों से आनंद लेने का, भोग भोगने का काम तो करना ही नहीं, वो ब्रह्मचर्य है ही नहीं, लेकिन जानने का काम लेना भी ब्रह्मचर्य का साधक नहीं है, बाधक है। गजब हो गया, अब आंख से देखे ही नहीं, अब कान से सुने ही नहीं, अब समय सार पढ़ना भी ब्रह्मचर्य का बाधक हो गया, क्यों? अब तुम्हारा प्रवचन सुनना भी ब्रह्मचर्य का बाधक हो गया, अब हो गया हद, अब रहने दो सब, अब अंतिम दिन है इसलिए हम क्या कहें, पहले से ये बात कहते तो ब्रह्म क्यों मुकुंद भाई, अब 10 मिनट रह गए हैं, अब क्या हो सकता है, और 10 मिनट बोल दो जितना बोलना है। अरे भाई ये सच्ची बात है कि जब तक इन इंद्रियों के माध्यम से देखना जानना रहेगा, तब तक बाह्य पदार्थ ही देखने जानने में आएंगे, आत्मा देखने जानने में नहीं आएगा। इसलिए इनका भोग नहीं, इनका जानना भी बंद करेंगे, तब शुद्ध आत्मा का अनुभव रूप ब्रह्मचर्य। भोग पक्ष के त्याग की बात जब करते हैं तो सारी दुनिया बहुत खुश होती है। सच्ची बात कही आपने, अच्छा किया, बिल्कुल सच्ची बात है। जब जानने का निषेध करते हैं तो अच्छों अच्छों को पानी, बताओ मैं, पांच इंद्रियों को उसके माध्यम से पर को जानते जानते किसी को केवल ज्ञान हुआ हो, ऐसा उदाहरण आपके पास हो तो मुझे बताओ। अरे आत्मा की शोध करनी हो तो बाहर नहीं खोजना पड़ता, अंदर में खोजना है, लेकिन मेरी ये कभी कभी टोपी खो जाती है। नंद जी भाई आपकी भी कुछ खोती होगी ना टोपी, वो चश्मा मश्मा खो जाता क्या? नहीं, मैं बहुत खोजता हूं लेकिन नहीं मिलती है। तो मेरा पत्नी मुझे व्याख्यान देती है, दूसरों को बहुत समझाते हो, पहले तुम भी समझो क्या कि ऐसे नहीं मिलेगी तो कैसे मिलेगी कि बैठ के शांति से सोचो कि तुम कहां कहां गए थे, पाटनी जी के यहां गए थे, मोटानी जी के गए थे, मुकुंद भाई के यहां गए थे, वहां छोड़े आए हो गए। बैठ के शांति से आंखें बंद करके सोचो तो टोपी मिलेगी, ऐसे जगह जगह खोजने से नहीं मिलेगी। देखो तो बाहर में जो चीज खोई है वो भी बाहर में खोजने से नहीं मिलती है, उसे भी आंखें बंद करके अंदर में खोजना पड़ता है तो बाहर की खोई हुई चीज मिलती है कि नहीं? क्योंकि चीज थोड़ी खोई है, टोपी तो जहां रखी थी वहीं रखी है, वो तो बेचारी एक इंच हिली नहीं है, तो खोया क्या है? उसका ज्ञान स्मृति में से गायब हो गई कि मैंने कहां रखी थी। क्या खोया है? ज्ञान स्मृति धारणा, और वो ज्ञान में, इसलिए ज्ञान को ज्ञान में खोजना पड़ेगा। तो बाहर कोई खोई टोपी भी आंखें बंद करके खोजता हूं तो याद आ जाती है, अरे नितिन भाई के यहां गया था वहां छोड़ाया, मिल जाती क्या? नहीं मिल जाती है। तो बाहर खोई चीज भी आंख बंद करके खोजने पर मिलती है, तो जो अंदर खोया आत्मा है वो आंख खोल कर देखने पर कैसे मिलेगा? सीधी रहती ब्रह्म भाव अंतर लखो, पूजा में लिखा ना, तो ब्रह्म भाव को अंदर में देखो, ये बाहर देखने की चीज नहीं है। पूजन की एक पंक्ति पर आजकल बहुत नाक भौं से कोड़ी जाती है, कहते ना संसार में बिस बेल नारी तज गए योगी स्वरा, जानत धर्म दस पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। नारी उत्थान का जमाना आ गया है ना, नारियों के भी वोट चाहिए ना, नारियों का भी पक्ष लेना है ना। क्या लिखा है इसमें पूजनकार ने? नारी को विष की बेल लिख दी, संसार में विष बेल नारी, क्यों तो नारियां यदि विष की बेल हैं तो ये आदमी का अमृत के वृक्ष है, ये विष की बेल है तो अमृत विष के वृक्ष है, इसमें क्या है? क्यों इसलिए पलट देने चाहिए, और बहुत लोगों ने तो पलट भी दिया है। लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें दूसरे की पूजन में कुछ पलटने का क्या अधिकार है? तुम्हें ताकत है तो नहीं बना दो, इससे बढ़िया बना दो, लोग इसे करने छोड़ के तुम्हारी करने लगेंगे, ये खुद तो ताकत नहीं है। हम उसमें ही पलटा पलटी करेंगे, उसका अर्थ समझने की ताकत नहीं है तुम्हें। नहीं नहीं हम तो पलट देंगे, तो पलट दो, क्या पलटोगी? ऐसा तुम बोला गए, बहुत से लोग पलट पलट के बोलने लग गए। मेरी भावना बोलते हैं ना, पर धन बनता पर न लौटाऊ संतोषा मत या करूं, पलट गए। स्त्रियां बोले पर धन भरता पर न लौटाऊ, क्यों? अरे पलटा पलटी से कोई जरूरत नहीं है, तो क्या करें स्त्रियां बदल करके? संसार में विष ब्राक्ष नर सब तज गई योगी स्वरी, ऐसा बोला करे कल से अरे भाई यहां नारी का अर्थ कोई औरत है ही नहीं। मैथिलीशरण गुप्त का पढ़ा है, एक उनका काव्य है पंचवटी, तो पंचवटी में राम और सीता अंदर सो रहे हैं कुटिया में, और बाहर लक्ष्मण दरवाजे पर ड्यूटी दे रहे हैं सुरक्षा गार्ड की तरह। इतना में सूर्पनखा आई और उनसे शादी का प्रस्ताव करने लगी, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो सेवक हूं, मेरी शादी की बात मेरे से नहीं की जाती, तुम नहीं जानती हो भारतीय नारी होकर के, मेरे माँ बाप से करो। हम माँ बाप तो यहां नहीं है, भाई भाभी है, तो मेरे बड़े माँ बाप जैसे ही हैं, मेरी शादी की बात तुम्हें करनी है तो मेरे भाई भाभी से करो, मेरे से नहीं करो। तो तुम्हारे माँ बाप को आना चाहिए बात करने के लिए। खैर तुम आ गई हो, तुम्हारे यहां ये संस्कृति नहीं होगी, हमारे यहां तो ये संस्कृति है, उन्हें पूछना होगा तो मेरे से पूछ लेंगे। तुम कौन होती हो मेरे से पूछने वाली? क्या ठीक है उनसे बात करते हैं। तो अंदर गई जगह रामचंद्र जी को, लेकिन सीता उसने सूर्पनखा ने रामचंद्र जी को देखा तो लक्ष्मण से ज्यादा सुंदर रामचंद्र जी लगे उसे। रामचंद्र जी से बात तो की उसने लेकिन लक्ष्मण के बारे में नहीं, रामचंद्र जी के बारे में। क्या मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं? मामला पलट गया। तो उन्होंने कहा मैं तो शादी शुदा हूं, मेरी तो पत्नी साथ में ये सीता है, क्या बात करती है तुम? तो वहां लिखा है पंचवटी में विभीषण गुप्त ने कि वो जवाब देती है, तो क्या मनुज नहीं होते हैं दो दो धाराओं वाले? अरे शादी शुदा हो तो क्या बात है, पुरुष की दो और तो नहीं होती है क्या? बहुत है शास्त्रों में, हजारों लोगों के हैं। तो क्या मनुज नहीं होते हैं दो दो धाराओं वाले? ख्याल में आए ना? तब वो आगे कहती है, नरकृत शास्त्रों में जितने बंधन हैं वे हैं सब नारी को लेकर, और अपने लिए सभी सुविधाएं बैठे पहले ही कर बैठे नर। व्यंग किया उसने, क्या व्यंग किया? कि शास्त्र सब पुरुषों ने बनाए हैं, औरतों ने कोई शास्त्र नहीं बनाया क्या? इसलिए अपने लिए सारी सुविधाएं 96,000 शादियां, और नारियों के इतने बंधन बांध दिए कि दूसरे की तरफ देख तक नहीं सकती है। कि नरकृत शास्त्रों में जितने बंधन हैं वे सब नारी को लेकर, और अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। तो अपन ने लिखा था, लिख लो सब क्या है। तो रामचंद्र जी ने जवाब दिया, बहुत सुनने लायक है। सूर्पनखा को क्या जवाब दिया त्रिलोकचंद जी? कि तो क्या नारियां शास्त्र रचना कर, अब क्या चाहती हो कि औरतें शास्त्र लिखें? और तो क्या नारियां शास्त्र रचना कर अब बहुपति का करें विधान? अब औरतें शास्त्र बनाएं, और लिख रहे हैं कि बहुत से पति रख सकती हो, आदमी एक ही औरत रखे, बनाओ ऐसा करो, और क्या करो, तुम क्या चाहती हो? तो क्या नारियां शास्त्र रचना कर अब बहुपति का करें विधान, पर उनके सतीत्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। तुम्हें मालूम नहीं है कि सतियां कितनी हुई हैं, सैकड़ों हुई हैं, और उनके गीत किन्ने गाए हैं पुरुषों ने, पुराण किसने लिखे हैं पुरुषों ने, और महासतियों के गीत गाए, सीता के गीत गाए, द्रौपदी के गीत गाए, सबके गीत किन्ने गाए हैं। उनकी प्रशंसा लिखने के लिए भी नारियों ने शास्त्र लिखा, पुरुषों ने नहीं लिखे। और मैं पूछता हूं कि नारियां तो इतनी सती हुई, पुरुषों में कोई सत्ता हुआ? पुरुष सत्ता प्रिय जरूर होते हैं लेकिन सत्ता नहीं हुआ, एक भी पुरुष का हो इतिहास में नाम तो बोला। सतियां 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 क्यों? 24 महासती आती ना, क्यों सितंबर में आती ना? अब महासती जी महासती जी, मुनिराज को कोई महासत्ता कहता है? महासती जी कहते कि नहीं कहते हैं? पर उनके सतीत्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। अरे भाई इसमें कोई नारी की निंदा की बात नहीं है, पूजा में यहां नारी माने नारी है ही नहीं, तो नारी माने क्या है? ये तो प्रतीक है विपरीत सेक्स का, पुरुषों के लिए स्त्री और स्त्रियों के लिए पुरुष। ये नारी शब्द माने तेरे जो विपरीत सेक्स है, और उसकी जो तेरी जो भावना उसके प्रति जो तेरे हृदय में आकर्षण है, उसका नाम यह नारी है। संसार में विषबेल नारी माने नारी के प्रति तेरे हृदय में जो आकर्षण का खोटा भाव है उसको यह विषबेल कहा है। नारियों के हृदय में जो पुरुषों के प्रति जो खोटा भाव है उसको विषबेल कहा है। किसी जाति को, नारी जाति को या पुरुष जाति को विषबेल कहने की यहां भावना ही नहीं है, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में तो एक आत्मा होता है और एक परमात्मा, तो आत्मा परमात्मा से बात कर रहा है, स्त्री पुरुष होता ही नहीं। गुरुदेव बोलते थे ना, मुमुक्षु मुमुक्षु होता है, स्त्री नहीं होता पुरुष, मुमुक्षु और मुमुक्षुनी ऐसा बोलते हैं। ये तो मुमुक्षु है और ये मुमुक्षुनी है कि मुमुक्षु? इंदिरा गांधी से पूछा था कि तो महिला प्रधानमंत्री आपको कैसा लगता है, उन्होंने कहा मुझे मैं प्रधानमंत्री हूं ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं पुरुष प्रधानमंत्री हूं कि मैं महिला प्रधानमंत्री हूं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, इस देश में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्राणी नहीं होता। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो प्रधानमंत्री होती है। समझ में आ गया? नहीं, राष्ट्रपति बनेगी कोई महिला उसे राष्ट्रपत्नी बोलेंगे आप क्या? तो राष्ट्रपति ही होगी ना। तो भगवान के सामने सब भगत होते हैं, ये सब आत्मार्थी होते हैं, सब मुमुक्षु होते हैं, कोई महिला और पुरुष नहीं होते हैं। लेकिन अब क्या करें कि दुनिया को कभी, क्योंकि पुरुष है इसलिए उस भाषा में बात करनी है, पुरुषों के हृदय में जो खोटा भाव है उसकी निंदा करनी है, इसलिए उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया कि संसार में विषबेल नारी तज गए योगीश्वरा। मैं पूछता हूं नारी माने क्या होता है? अकेली पत्नी ही होता है, औरत ही होता है, मां मां नारी नहीं है, बहन नारी नहीं है, बोलो बेटी अपनी नारी नहीं है? इसे पलट के ऐसा बोलो ना, संसार में विषबेल जननी, ठीक है? नहीं खाली तो नहीं देता, संसार में विषबेल बेटी तज गए योगी, नहीं नहीं तो नहीं देता ना, संसार में विषबेल भगनी, नहीं जता ना। तो ये भी तो नारियां हैं ना, इनको मां को कहीं ऐतराज नहीं हुआ कि मेरे को क्यों कहा, बेटी को कहीं ऐतराज नहीं हुआ, बहन को कहीं ऐतराज नहीं हुआ। तो ये कौन सी नारियां बची मेरी समझ में नहीं आता जिनको ऐतराज है? अरे कभी कभी मां बहन बेटी होंगी कि नहीं? तो कभी अपनी मां बहन बेटी को विषबेल कहना चाहता है? यदि तेरी मां विषबेल है तो तू विषफल है। विषबेल में तो विषफल ही लगेगा, अमृत फल कैसे लगेगा? अरे भाई कवि की इच्छा किसी नारी की निंदा करना है ही नहीं। जो आत्मा के अंदर खोटी वासना है उसकी निंदा है, और वो बात निंदनीय है इसलिए उसकी निंदा है। उसमें क्या बात है? यहां तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि ज्ञानत धर्म दस पेड़ चढ़ के शिव महल में पग, अगला पैर तो तेरा मोक्ष रूपी महल में पढ़ना है, और ये कहां तू स्त्री पुरुष के झगड़े में पड़ गया? और कवि के भाव को समझने की कोशिश तो करता नहीं है, और उसमें सुधारने के चक्कर में ये सारा जगह दूसरे के सुधारने के चक्कर में जितना है उससे सौवां भाग भी अपने को सुधारने के चक्कर में रहता तो इसका। इसलिए सभी लोग उस शुद्ध आत्मा को समझ कर निश्चय ब्रह्मचर्य को समझे, और व्यवचार ब्रह्मचर्य माने शील व्रत को भी जीवन में धारण करके परम पवित्र हो, सुखी हो, इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।